आत्मचिंतन या अपने कल्याण के बारे में सोचना वगैरह हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, ऐसा महसूस होता है। फिर गृहस्थी या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाए, यानी धर्म और कर्तव्य हमें साथ साथ पालने हों तो क्या प्राइमरी है और क्यों प्रायोरिटी होना चाहिए था। खैर, प्राइमरी क्या प्रथम है यह सब? देखो भैया, हम लोगों के जिम्मे एक ही दायित्व नहीं है, हर व्यक्ति के जिम्मे कम से कम चार दायित्व तो हैं। एक गृहस्थ की अपेक्षा से कह रहा हूं, मुनि महाराज का दायित्व इतना ही है कि आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण की भावना रखें, ये मुनि महाराज का है। लेकिन गृहस्थ के लिए तो पहला दायित्व है कि वो अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित ढंग से चलाए, परिवारजनों को सुरक्षा दे, प्यार दे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनके कल्याण में सहयोगी बने, ये उसकी पहली जिम्मेदारी। उसके बाद वो जिस समाज में रहता है, जिस समाज की वजह से उसे सुरक्षा मिली है, जिस समाज से जुड़ करके और वो अपनी एग्जिस्टेंस फील करता है, उस समाज के प्रति भी दायित्व है। जिस देश में वो रहता है उस देश के प्रति भी दायित्व है, और प्राणी मात्र के प्रति भी कोई दायित्व है, मेरे द्वारा किसी की भी क्षति ना हो ये भी दायित्व है। ये चार तो हैं ही उसके लिए, लेकिन इससे भी बड़ा दायित्व है अपने आत्मा के कल्याण करने का दायित्व। अब उसे इन पांचों को व्यवस्थित ढंग से चलाना है। अगर आप मुनि बन जाते तो आपके जिम्मे आत्म कल्याण और लोक कल्याण की भावना, ये दो चीजें ही रहती, लेकिन आपने गृहस्थी का मार्ग चुना है तो आपके जिम्मे पांच दायित्व हैं। कई बार ऐसा लगता है कि गृहस्थ का दायित्व बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल भी है। उस सारे प्रपंच के बीच रह करके भी अनाशक्त रहना और अपने आत्म कल्याण की भावना निरंतर बनाए रखना और बाकी दायित्व को पूरा करना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग गृहस्थी करने के बाद भी अपने आत्म कल्याण की फिक्र करते हैं, बाकी दुनिया चाहे जहां जाए हमें क्या करना। तो बनाई काहे को थी गृहस्थी, करी काहे को थी, कहा किसने था? हाँ, ये विचार करने की बात है। अगर आपने गृहस्थी करी है तो आपका दायित्व अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जो परिवार जन हैं उन सबकी को सुरक्षा देना, प्यार देना, उनके कल्याण की चिंता करना। मित्र की परिभाषा लिखी जैनाचार्यों ने, जो निरंतर कल्याण का विचार रखे वो मित्र है, जो हमारे कल्याण का निरंतर सोचता रहे, ऐसे कल्याण मित्र को पाना साता वेदनी कर्म के उदय से ही होता है। तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी लिखते हैं कि ऐसा कल्याण मित्र मिलना जीवन में बहुत दुर्लभ है। कोई पूर्व पुण्य का उदय होगा तब ऐसा कोई कल्याण मित्र मिलता जो हमेशा कल्याण कैसे हो इसकी चिंता करे। गृहस्थी में ये विचार आना चाहिए। अकेले संसार बढ़ाने का अर्थ नहीं है गृहस्थी करना, आत्म कल्याण भी उसका अर्थ है, और साथ में जो हमारे साथ जीव हैं, अभी तक तो एक ही की जिम्मेदारी थी, अब तो दो दो की जिम्मेदारी है, और दो भी ऐसे चलेंगे जैसे कि एक ही चल रहा हो, ये गृहस्थी का बहुत बड़ा दायित्व। जैसे वहाँ जिस गुरु के शिष्यत्व को अंगीकार किया जाता है तो फिर उसके चरणों में अपना मन भी डाल दिया जाता कि वो जैसा सोचेंगे वैसा ही मैं सोचूंगा, वो जैसा देखेंगे वैसा ही मैं देखूंगा, जैसा सुनेंगे वैसा ही मैं सुनूंगा। ऐसा तो वहां जैसे हम फुली डिबोट होते हैं अपने गुरु के प्रति मोक्ष मार्ग में, इसी तरह एक दूसरे के प्रति गृहस्थ में भी डिबोट होकर के और चला जाता है, तब वहां भी आत्म कल्याण और पर कल्याण दोनों ही हैं। इसलिए आप इस दायित्व को कम नहीं माने। अब रही बात प्रायोरिटी की, तो गृहस्थ के लिए तो अपनी गृहस्थी को सबसे पहले देखना पड़ेगा, और उसकी गृहस्थी में ही उसका कल्याण निहित है। अगर वो अपने परिवार जनों के कल्याण की चिंता करता है तो मानिएगा कि वो अपना ही कल्याण कर रहा है। क्योंकि जब जब भी हम, आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है हमारे, कि देखो जब भी किसान कामना करता है, भावना करता है कहे कि पानी बरसे, तो क्या ऐसी भावना करता कि सिर्फ मेरे खेत में बरसे? नहीं, पानी बरसे, सब दूर बरसेगा पानी, लेकिन फसल किसकी काटेगा? वो सबके खेत की, अपने खेत की। भैया जब हम प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करते हैं तब भी आत्मा का ही कल्याण होता है, और जब हम आत्म कल्याण का विचार करते हैं तब भी प्राणी मात्र का कल्याण हुए बिना नहीं रहता, ऑटोमेटिकली हो जाता। हम नहीं भी चाहें तब भी हो जाएगा। क्यों? हम अपना कल्याण करना चाहेंगे तो दूसरे का कल्याण कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे के अकल्याण का विचार करेंगे तो अपना तो अकल्याण पहले हो जाएगा। दूसरे से गंदा बोलने का मन बनाएंगे तो अपना मन तो पहले गंदा करना पड़ेगा, तब ना दूसरे से गंदा बोलोगे, पहले नंबर यहां से शुरू होगा। तो दोनों चीजें बिल्कुल साइमल्टेनियस होने वाली चीजें हैं, इसलिए इसको प्रायोरिटी बेस तो नहीं बना सकते कि किसको प्रायोरिटी देंगे। आप जिसको भी प्रायोरिटी देंगे अल्टीमेटली वो सारी चीजें उसमें एक साथ ही जुड़ करके आ जाएंगी। आप किसी को भी दें, आप मंदिर में बैठे हुए हैं तब भी मानिएगा कि आप गृहस्थी का दायित्व पूरा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, और गृहस्थी में अपने परिवारजनों के कल्याण का विचार कर रहे हैं तब भी आप मानिएगा कि आप अपना ही कल्याण कर रहे हैं। हर स्थिति में ऐसा सोच करके करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाव सागर की शुरुआत कैसे हुई ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर बताते हैं कि हमेशा से ऐसे ही है। अब क्या करें, हमेशा से ऐसा ही है। हम बहुत पुराने लोगों से पूछे, दो दो साल पुराने लोगों से पूछा वहाँ पर, वो कहते हमारे से पहले से चला आ रहा। जिससे पूछो वो कहता बहुत पहले से चला आ रहा। आप बताइए किससे पूछे अपन कि कब से चला आ रहा। इसीलिए हमने संसार चक्र कहा है, संसार चक्र, या कि भाव सागर, समुद्र की थाह पाना आसान नहीं है। असीम ही कहलाता है समुद्र, भले उसकी सीमाएं हो पर वो भी असीम कहलाता है, उदाहरण है इसलिए सागर का या कि चक्र का। एक फेरी फेरी पर या कि एक वर्तुल पर, एक सर्कल पर कहां से शुरू करें? एंडलेस, बिगिनिंगलेस, कहीं से शुरू कर लीजिएगा, कहीं समाप्त नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। ठीक इसी तरह से संसार चक्र भी है, एक विशेष सर्कल जिसको अपन कहते हैं कि एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जहाँ कहीं भी बिगनिंग नहीं है, कहीं भी कोई एंड नहीं है। हाँ, उस संसार से पार हो जाएं या उसके सेंटर पे पहुंच जाएं तो फिर हम पेरिफेरी से बच गए, केंद्र पर पहुंच जावे, मोक्ष केंद्र है और संसार तो उसकी पेरिफेरी है। भटकने के लिए ये संसार है और आत्मस्थ होने के लिए मोक्ष है। इसलिए बिना भाव सब आत्माएं शून्य या मोक्ष में थी तो भाव सागर में, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया। ये बहुत सारे प्रश्न जिन्होंने 10 क्वेश्चन लिखे थे उनके जवाब दे रहा हूँ बहुत हिम्मत करके। दिगंबर साधु को आहार देने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अब बताओ आप। श्रावक के 3 नियम हैं, श्रावक को उन 3 नियमों का पालन करना चाहिए, और जब भी हम किसी भी त्यागी व्रती को, साधु को आहार दें तो हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। भिक्षा करुणा पूर्वक नहीं दी जाती, साधु जनों को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दी जाती मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए। और दाता के 7 गुण होते हैं, वे 7 गुण भी उसमें होना चाहिए। आज इस बात का ध्यान बहुत कम लोग रख पाते हैं, इसीलिए अपने यहाँ पर दान की प्रक्रिया होने पर भी आत्म संतोष या शांति नहीं मिलती। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा, यह जो आहार दान इत्यादि की प्रक्रिया है उसकी विधि जैसी कही गई है, 9 भक्ति पूर्वक आहार देना है तो 9 भक्ति पूरी करें, हम पूरे श्रद्धा के साथ करें। द्रव्य कौन सा वाला पदार्थ देने से महाराज की साधना में वृद्धि होगी, यह बात श्रावक जानता है, इतना विवेक उसे रखना पड़ेगा। कौन सा पदार्थ देने से उनके लिए तपस्या बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि उनकी तपस्या में और कमी आ जाए, वे गाफिल हो जाएं या अस्वस्थ हो जाएं तो उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं देगा। शुद्ध पदार्थ देगा, प्रासुक द्रव्य देगा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास। देने वाले दाता के सात गुण होंगे तो दान का फल बहुत मिलेगा, और पात्र उत्तम मध्यम जघन्य तीन होंगे। उत्तम पात्र मुनि महाराज हैं, एलक शुल्लक और आरिका माता जी मध्यम पात्र हैं, सामान्य जो सदगृहस्थ हैं, जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, वो सब जघन्य पात्र हैं। जैसे पात्र को दिया जाएगा वैसा ही उसका फल मिलेगा। इसलिए इतनी सब बातों का ध्यान रख करके अपन लोग आहार दान की प्रक्रिया को बहुत सामान्य सा समझते हैं, लेकिन आप समझिएगा कि ये प्रक्रिया बहुत कर्म निर्जरा और पुण्य के संचय की प्रक्रिया है, यदि हम ठीक ठीक उसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि श्रद्धा होना चाहिए दाता के अंदर, फिर दूसरे नंबर भक्ति। श्रद्धा और भक्ति में अंतर क्या है भैया? भक्ति वो है जिसमें, श्रद्धा तो वो है जिसमें हम उनको अपने घर में बुला लेते हैं कि बहु स्वामिन अत्र अत्र, वहां कहां जा रहे हैं, मैं तो यहां बुला रहा हूं। हाँ, और जैसे ही आने लगते हैं तो अरे ठहरिए ठहरिएगा, आ ही गए अब, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलकर भीतर ले जाता और उनको अटेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप आओ भोजन करना, हम आ रहे हैं अभी घूम करके, ऐसा नहीं। भक्ति क्या है? उनको अटेंड करना और उनको अपने स्थान तक भेजने जाना, वापिस जहां से वो आए हैं वहां तक उतने समय तक अटेंड करना, ये भक्ति है। फिर विवेक, क्या देना क्या नहीं देना, किसके बाद देना, कब देना। अभी अभी तो पानी लिया है, रस लिए खड़े हो गए, ना अभी रस नहीं भाई, अभी ठहरो, पानी तो दिया उनको। नहीं, मैं तो जो लाया हूं वो ही देऊं, चाहे जब देऊं। ले महाराज, अब बताओ कैसे करेंगे आप? ये विवेक तो होना चाहिए, श्रावक का है। देखो भैया, आपको बताऊं, आहार की प्रक्रिया मुनि महाराज की तो ऐसी है जैसे कि एक छोटे से नहीं बोलने वाले बेटे को माँ भोजन कराती है, ठीक ऐसी ही है। नहीं बोलते, चुपचाप, ज्यादा होता है तो हाथ बंद कर लेते हैं, और नहीं दोगे ठीक से तो मांगते तक नहीं है कि ये चाहिए कि वो चाहिए कि ये लाओ। इस तरह सावधानी, विवेक नाम का तीसरा गुण है दाता का। फिर कहते अमात्सर्य, दूसरे दाता से ईर्ष्या नहीं करना उन क्षणों में जबकि आहार दे रहे हैं। आओ आओ, सब आओ हमारे घर, महाराज आए हैं, आप सब पधारो। हम वैसे करोड़ों रुपए देकर के आपको बुलाते तो ना आते हमारे घर, हमारे घर महाराज आए, इसलिए आप सब अपने आप बिना बुलाए आ रहे हैं। आओ आओ, आप भी हमारे घर आओ, हमें भी जब आपके घर में महाराज जाएंगे तो हमें भी अवसर मिलेगा, हम भी आएंगे। आप ये प्रेम बढ़ना चाहिए, ईर्ष्या नहीं बढ़नी चाहिए। गुणशु प्रमोदम, अरे वाह इन्होंने तो जे हो देखो अभी अभी तैयार किया, इनकी कैसी भावना थी, इनकी इतनी भावना थी, मेरे यहाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा दुख तो है लेकिन देखो तो इनके यहाँ पर हो गया, अरे वाह इनकी भावना बहुत उत्कृष्ट थी, मैं भी कल ऐसी उत्कृष्ट भावना करूंगी। अरे काय की भावना थी, महाराज से पहचान थी सो उनके पहले चले गए, ऐसा तो जल्दी सोच लेते हैं। संक्लेश का चौका तो जल्दी लग जाता, विशुद्धि का चौका लगाना बहुत कठिन है। अमात्सरी होना चाहिए, दाता का चौथा गुण है इस बात का। एक आहार देने वाले को मुझे एक ग्रास मिल गया, मेरा सौभाग्य, अगर हाथ बंद कर लेते नहीं लेते तो क्या कर लेता, लेकिन कहने में क्या आता, ये कई तो मिलो है उनसे तो पांच पांच दस दस ले ले, हमसे बड़ी पार्शियलिटी है, हमने तो सोचा था यहाँ पक्षपात नहीं होगा लेकिन यहाँ भी धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा पक्षपात, हम तो कल से यहाँ है ही नहीं। ऐसा विचार आ जाता खट से, आना क्या चाहिए कि देखो इनका कितना सौभाग्य है, हमारा भी है कि हमें कम से कम देने तो मिला। ऐसी अमात्सरी भावना, संतोष, मुझे कुछ नहीं चाहिए हैं। धन्य कुमार के चरित्र पढ़ो, उसमें पूर्व जीवन में क्या किया था, अकृत पुण्य था वो, उसका नाम मुनि महाराज जब तक नहीं आए थे तो क्या कहता था, जल्दी आ जाते, थोड़ा बहुत उनको दे देते, फिर पूरी खीर हम खाते। हाँ, 11 साल का, बड़ी मुश्किल में तो माने खीर बनाई, गरीब था वो। तो माँ कह के गई थी कि महाराज निकले तो रोक लेना, जब वो खा लेंगे तब मिलेगी। अच्छी बात है, उसके मन में कोई श्रद्धा ही नहीं थी, महाराज निकले तो पैर पकड़ लिए, आप जाना मत। क्यों? माँ आती होगी पानी भर करके, और आप नहीं खाओगे तो हम कैसे पाएंगे, इसलिए रुको। आप रोक लिया, माँ आई उतने में सिर पर घर करस लिए हुए पड़गा लिया, आहार शुरू। आहार शुरू हुआ, जैसे जैसे देता जाता था वैसे वैसे मन में भाव आता था, मैं तो तृप्त हो गया, अब मुझे नहीं खाना, महाराज पूरा ले ले। महाराज को अक्षीण महानस नाम की रिद्धि थी, जिस पात्र में से जो वस्तु दे दी जाएगी वो चक्रवर्ती का कटक आकर के अक्षौणी सेना खा ले तो खत्म नहीं होने, अनगिनत लोग। और इनके मन में ये आता जाता था कि महाराज पूरी ले ले में, पूरी ले ले में, मुझे इसके फलस्वरूप कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है, कोई परमार्थ माने आगे के भाव में मुझे कोई आकांक्षा नहीं, संतोष है, देने में ही संतोष। और फिर कहते अलुब्धता, दाता का एक गुण है अलुब्धता। अलुब्धता के मायने क्या है? इतनी चीज बनाई है महाराज ले ले में, अरे महाराज लेते ही चले जा रहे हैं, हमने तो सोचा था थोड़ा सा लेंगे, इन्हें तो पूरे ही ले लिया। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, इसी को बोलते आधा आता नहीं है, लेकिन रखा तो आचार्यों ने लिख करके कि आ जाए कदाचित कर्म के उदय से, तो अलुप्तता। और फिर कहते क्षमा, सब जीवों से उन क्षणों में क्षमा भाव धारण करता, ऐसे दाता के 7 गुण हैं। इस तरह इन गुणों से युक्त व्यक्ति हो तो ही आहार ध्यान, और क्या सावधानी रखना भैया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलते हैं अपन, तो अपने अंदर झांक करके भी देखना चाहिए कि इस समय मेरी मन शुद्धि, मन शुद्धि मतलब क्या, अच्छे विचार हैं, यही मन शुद्धि है, किसी के बारे में खोटे विचार नहीं है, इतना ही तो मन शुद्धि, और कहां से शुद्धि करेंगे। आर ध्यान रो ध्यान नहीं है, यही मन शुद्धि, वचन शुद्धि, किसी से अनर्गल वचन नहीं बोलेंगे, किसी को जोर से ऊंचे स्वरों में नहीं कहेंगे, निकल जाओ तू हट क्या कर रहा, ऐसी भाषा, हाँ कठोर वचन नहीं बोलेंगे, यही वचन शुद्धि, शरीर से नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके और आहार के लिए गदगद हो करके खड़े हुए हैं, इतनी बातें, सावधानी रखनी चाहिए भाई। सावधानी इसलिए रखनी चाहिए ताकि अपन को ज्यादा लाभ हो, क्रिया तो अपन कर रहे हैं लेकिन अगर सावधानी और श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा, नहीं तो घाटे का सौदा है, मेहनत पित्ती करी और सार कछु नहीं निकलो। इस अपेक्षा से जो है जितना अधिक सावधानी रखेंगे, क्या अपंग व्यक्ति भी दिगंबर साधु को आहार दे सकता है? यदि नहीं तो क्यों, जबकि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है। अपंग में भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने बल पर खड़ा हो सकता है, यह बात पहले देखनी पड़ेगी। अगर अपना काम अपने हाथ से, आचार्य महाराज का कहना कि जो व्यक्ति अपना काम अपने हाथ से कर सके, हाथ पैरों में थोड़ी बहुत उसके कोई कमी है लेकिन अपना काम अपने हाथ से बिना बैशाखी के बिना किसी सहाय के अपना काम अपने हाथ से कर लेता है, आंख से ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, मुंह से स्पष्ट उच्चारण कर सकता है, थोड़ी बहुत जबान लड़खड़ाती है मन शुद्धि बोलने में, तो उतनी वो नहीं है। और हो सकता किसी को कोई इस तरह की हो गई हो चीज जिससे थोड़ी बहुत डिफेक्ट आ गया हो, तो उसके लिए हम भी है लेकिन अधिक मात्रा में, जैसे अब हाथ ही नहीं है, इतना हाथ ही नहीं है तो फिर कैसे देंगे आहार दान, तब फिर उस समय क्या करना, तब भी दे सकते हैं, कैसे भावना भा रहे हैं, आप सब देव, आप सब देव, हम तो इसी में संतुष्ट हैं, प्रेरित करना, आप देव क्यों नहीं देते हैं, आप आपको देना चाहिए, मैं तो देने लायक नहीं रहा, मैंने कोई पूर्व जीवन में कोई दुख नहीं है, मैंने कुछ ऐसा करा होगा इसलिए मुझे आज ये तकलीफ है, पर आप देव सब, ऐसी कारित भी है और अनुमोदना भी है। तो भैया अपंग व्यक्ति अगर अपने में असमर्थ है अपना काम करने में, वही उसका अपंगपना कहलाएगा, उसके लिए भी आचार्यों ने कृपा करके रखा है कि तुम खुद नहीं दे पा रहे तो दूसरे को प्रेरणा दो, प्रेरणा भी नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ के खड़े रहो और देखो पूरा लाभ मिलेगा, देने वाले से भी ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि नहीं देने वाला विचार कर रहा है कि देखो ये सब कितने सौभाग्यशाली हैं, और देने वाला देखा मेरा सौभाग्य मैं दे रहा हूं, ऐसे अहंकार से भर करके कहो अपना अहित कर ले वे। इसलिए तीनों के लिए है, अपंग व्यक्ति को भी। एक व्यक्ति यहीं पर आए थे मेरे से पूछने, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं तो ले लूंगा, सभी महाराजों का जिम्मा नहीं ले रहा हूं मैं, हाँ, क्योंकि आचार्य महाराज ने तो हमारे लिए बोल दिया कि देख लेना अपना काम अपने हाथ से। अब थोड़े से पैर में एक बेटा था वहां पनागर में, खूब आहार देता था वो, और एक दिन स्कूटर से जा रहा था जबलपुर, इधर उसको टक्कर लगी स्कूटर में, इधर लगी तो दोनों उंगलियां ये गई, एक झटके में निकल गई। अब उसकी इतनी इतनी सी दो बची, फिर ठीक हो गई वो, जुड़ गई, माने जुड़ी तो नहीं पर क्या बोलते हैं उसको, ठीक हो गई उस पर खाल। अब इतनी 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 टूट गई, अब बेचारे को जीवन भर के लिए आपने आहार दान से वंचित कर दिया। आचार्य श्री कहने लगे नहीं, आप चम्मच से पकड़ करके, दो उंगलियां नहीं है बाकी तो तीन है, चम्मच अच्छे से पकड़ता था आहार देता था, नहीं तो जीवन भर 18 साल का है जीवन भर को, हाँ अगर हाथ ही नहीं रहता तो बात अलग, फिर बाएं से नहीं देंगे, अगर हाथ नहीं है ये भी नहीं है अगर तो भी नहीं देंगे, कोई दोनों में से, इसको बोलते अंग भंग हो जाना उसको अपंग, और अगर ये उपांग है, ये उपांग कहलाते, ये अंग कहलाता है, तो इसमें से कोई, या कि किसी के एक रोशनी, एक आंख में रोशनी कम है या रोशनी चली गई पर एक आंख में रोशनी पूरी है तो देगा, शोधन कर लेगा। इस तरह से भैया आचार्य महाराज ने हम लोगों को ऐसी आज्ञा दी है, बाकी इससे ज्यादा अगर कोई स्थिति बन जाए तो फिर हमें कारित और अनुमोदना ही करना चाहिए। झूठा चालाक चापलूस व्यक्ति ऊंचाइयां जल्दी, तो वो पैर निकाल करके और उससे खड़े नहीं हो सकते ना, इसलिए अगर वो अपने बल पर खड़े होने की क्षमता रखते तो बात अलग थी। हमने पहले ही कह दिया कि अगर बिना बैशाखी के, बिना किसी पैर लगाए आर्टिफिशियल, हाँ खुद अपन खड़े हो सके तो ठीक, नहीं तो हाथ जोड़ के अनुमोदना करो ना, उसमें तो और बढ़िया। क्लियर हो गया, यही क्लियर करना था, ठीक। झूठा चालाक चापलूस व्यक्ति ऊंचाइयां जल्दी छीन लेता, कौन सी वाली ऊंचाइयां, भौतिक, अरे उसमें क्या रखा, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, कौन सी बड़ी बात है, आपने अगर कोई भौतिक सुख सुविधाएं खोज ली हैं, उनमें ऊंचाई पाली है तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जो अपन देख रहे हैं आज लोग जो है बहुत सारी सांसारिक चीजें पा लेते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं पा लेते, तो अपन सोचते हैं इनने उतनी ऊंचाई पाली, ऊंचाई उन्होंने नहीं पाई, ऊंचाई तो वास्तव में वे पाते हैं जो अपने आत्मा के गुणों में समृद्ध है, ऊंचाई वास्तव में उनकी है, इसलिए इसको ऊंचाई मत मानना भैया। झूठा चालाक व्यक्ति आत्मा में ऊंचा कैसे हो सकता है, वो अपने कर्मों से ही नीचा है इसलिए वो नीचा हो गया, आत्मा में भी नीचा हो गया, जो अपने कर्मों से ऊंचा है वास्तव में वो ऊंचा है, इसलिए इसको तो भौतिक ऊंचाइयां तो कोई भी पा सकता है। हमारे मंदिर में बहनों के लिए प्रक्षाल करने की अनुमति क्यों नहीं है, जबकि बहनें पुरुष को जन्म देती हैं और उनसे ज्यादा, लोगों से ज्यादा धार्मिक होती हैं बहनें। हाँ आपका कहना तो ठीक है, तो कहीं कहीं पर तो परमिशन है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ माँ लोग भी करती हैं अभिषेक, वहाँ करती, जहाँ की जैसी परंपरा है भैया वहाँ पर वैसा करना चाहिए, और झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्यों करते हैं वो क्यों नहीं करते। अभी एक आए थे वो डीसी जैन साहब, तो वो भी बड़ी बढ़िया बात कह रहे थे, कह रहे हम बोले पूजा करने जाते हैं तो सबको हमारे पूजा ही में इंटरेस्ट है, वो कहेंगे आज आपने धोती ऐसी क्यों पहनी, आज आप ऐसी क्यों चढ़ा रहे थे, आज आपने जहां द्रव चढ़ना थी उसको यहां रख लिया, उसको ऐसे कर लिया, बोले सब यही देखते रहते हैं, भगवान में कितना मन लगा ये किसी ने नहीं देखा। वो कहते कि हम तो ये कहते लोगों से कि तुम्हें सीधे खड़े होकर करने, सीधे खड़े उल्टे होकर करने तो उल्टे कर, पूजा करो मगर झगड़ा मैंने पढ़ो, तुम्हें जैसे करना हो वैसे करो, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, अपना भावों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, इसी में उलझे हुए हैं। तो जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है भैया, आपको अगर मन है तो दक्षिण भारत में जाकर के करके आ जाओ। यहाँ अमी ने लिखा कि अगर आप बहुत तीव्र तपस्या करेंगे, अपनी क्षमता से ज्यादा तपस्या करेंगे तो क्या होगा, प्राणों का वियोग हो जाएगा, और प्राणों का वियोग होने पर आप अपने अच्छे परिणामों से कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहां पर क्या है सिवाय असंयम के और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कम से कम थोड़ी सी ढील दे करके और संयम का पालन कर लेते तो धीरे धीरे करके आत्म कल्याण हो जाता। इसलिए दोनों मार्ग रखे हैं, एक कठोर चर्या भी रखी है और एक मृदु चर्या भी रखी है। एक को जिन कल्पी कहते हैं, एक को स्थविर कल्पी कहते हैं। जैनाचार्यों ने ऐसी व्यवस्था बनाई। वर्तमान में जिन कल्प देखने में नहीं आता, स्थविर कल्प ही है, मृदु चर्या है। उतनी तीव्र तपस्या नहीं है कि एक बार बैठ गए चतुर्मास स्थापित करके और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिनांक खोली। बताइए, आषाढ़ की चतुर्दशी को बैठ गए हैं, आने वाली है, और उठेंगे कब? कार्तिकी अमावस्या के दिन, 3.5 माह बैठ ध्यान में लीन हो गए। ऐसी उत्कृष्ट तपश्चर्या, वन में रह करके तपश्चरण कौन कर सकता है? वैसा सहनन चाहिए, वज्र वृषभ नाराज सहनन, तब जाकर के वो तपस्या हो सकती। तो आज तो हमें जब भी किस हद तक समझौता करना जिससे हमारी बुनियाद ना टूटे, जिससे हमारा जीवन क्षति को प्राप्त ना हो, वहां तक हम समझौता करेंगे, और दूसरे की भी क्षति ना हो, ये भी ध्यान रखें दोनों जी। खराब समय आए उस समय धर्म भी अच्छा ना लगे, संभव है, समता भाव भी ना रख पाए, तब फिर क्या करना चाहिए? शांत होकर के देखना चाहिए। जैसे कि बाढ़ में फंस गए हैं तो क्या करना चाहिए? हाथ पैर चलाना चाहिए? कहते नहीं, छोड़ दो, कोई एफर्ट नहीं करो, बहाव में अपने को बहने दो। लेकिन सावधान रहो, जहां भी कोई पेड़ की टहनी या कोई छोटा सा पकड़ने का स्थान दिखे, वहां फौरन लपक करके पकड़ लो और बचा लो अपने जीवन को। ठीक ऐसा ही जब कर्मों का फ्लड आता है, जब भीतर कर्मों का बहुत तीव्र प्रवाह आता है, कुछ नहीं सूझता, ना धर्म सूझता है, ना कर्म सूझता, कुछ नहीं सूझता है, तब फिर क्या करना? उस बहाव में शांति से, सजग भाव से, कि देखो मेरे कैसे कर्म का उदय है, कल तक जो धर्म अच्छा लगता था आज वो मिथ्या मालूम पड़ता है, बहुत तीव्र कर्म का उदय है, अब मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना जीवन का, शांति से इस कर्मों के बहाव को निकल जाने दो। जैसे ही ये थोड़ा सा शांत होगा, मैं फौरन अपना काम शुरू करूंगा। अपन लोग उसी समय अपना पेशेंस खो देते हैं जिन क्षणों में हमारे कर्मों का तीव्र उदय आता है। इसलिए जब अपने सुख के दिन हैं, अपने धैर्य का अभ्यास कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो दुख में धैर्य खो जाता है। कहते हैं आचार्य महाराज कि दुख पूर्वक जिसने विद्या हासिल की है वो सुख में भी नहीं गायब होती, लेकिन सुख पूर्वक जिसने विद्या हासिल की वो दुख आने पर गायब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है जब विपत्तियां आए उसके पहले अच्छी स्थिति में अपने अंदर इतनी सामर्थ, इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखनी चाहिए। लेकिन अपन बेसुध हो जाते हैं, सुख में भी बेसुध हो जाते, भैया दुख में तो होते ही हैं, सुख में भी बेसुध हो जाते, जब सब अपने मन का चलता है तब भी अपन बेसुध ही हैं एक तरह से। तो दोनों स्थितियों में ऐसे जीता जा सकता। क्या कोई ऐसा सूत्र है जो हमें पूरे दिन धार्मिक बनाए रखे? मेरे तो अनुभव से यही आया कि सुबह से शाम तक मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। एक क्षण पहले जैसा जीता था, अगले क्षण उससे अच्छे ढंग से जीऊंगा। एक क्षण पहले मेरे मन में गुस्सा था, अगले क्षण नहीं होना चाहिए। एक क्षण पहले मेरे मन में झूठ था, अब नहीं होना चाहिए। जो जो बुराइयां एक क्षण पहले मेरे में है, अगले क्षण भी ना हो, ये हमेशा अगर ध्यान में बना रहे तो पूरा दिन धर्म पूर्वक निकल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सामने वाले व्यक्ति से कड़ी बात कह दी, अरे अब अगले क्षण मैं कड़ी बात नहीं कहूंगा, हो गया धर्म, इतना ध्यान आ गया। भले ही फिर से कड़ी बात मुंह से निकल जाए, फिर अगले क्षण विचार, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि मैं कड़ी बात नहीं बोलूंगा, ये तो मैंने बहुत कठोर वचन बोल दिए, अब नहीं बोलूंगा। अब फिर ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर अगेन। हम निरंतर इस चीज के लिए प्रयत्नशील रहें कि अपने जीवन को मुझे प्रतिक्षण अच्छा बनाना, यही तो धर्ममय है भैया। यदि किसी सड़क दुर्घटना हो जाए और पुरुष की अनावश्यक परेशानियों से भय खाकर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाते, जबकि ऐसा नहीं करने पर मन बड़ा दुखी होता है, क्या करें? ठीक यही चीज 1984 में जब जबलपुर में आचार्य महाराज के साथ चतुर्मास कर रहे थे तब सामने आई थी। दो लोग स्कूटर पर जा रहे हैं, रात 10 बजे लॉर्डगंज के सामने की गली में से एक व्यक्ति बेतहाशा दौड़ता आया है, दूसरा उसके पीछे दौड़ता आया है, 25 कदम की दूरी पर उसने उसको चाकू मारा है, खून निकलना शुरू हुआ बहना और वो वहीं गिर गया है, और ये यहां से स्कूटर पे जा रहे हैं। क्षण भर को तो सहम गए, फिर सोचा कि अभी अभी तो मार के भागा है, बचा सकता हूं, तो रोक ली गाड़ी। लेकिन पीछे वाले मित्र ने कहा कि सुनो, मुझे भाग जाने दो, मेरी गृहस्थी मेरे साथ लगी हुई है, कहां कहां तक जाकर के मैं पुलिस को जवाब दूंगा कि मैंने नहीं मारा है, मुझे जाने दो। तो इसके मन में भी आ गया, जो मुझे सुना रहा है उसकी बात कह रहा हूं आपसे, उसके मन में भी आया कि मेरी भी तो गृहस्थी लगी, भैया अगर अपन अभी इनको बचाने लगेंगे तो कितनी जगह गवाही देते फिरेंगे अपन कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आई विटनेस। अब बोले मैं स्कूटर स्टार्ट करके और चले आया सुबेरे सुबेरे, रात भर तो नींद आई नहीं, सुबेरे सुबेरे पेपर में पढ़ा कि किसी ने किसी को लाटगंज के सामने मारा और वो फर्स्ट एड के अभाव में मरण को प्राप्त हो गया। महाराज 8 दिन बाद वो मेरे से मिले थे, बोले महाराज जब जब भी खाना खाने बैठता हूँ वही उसके चाकू लगा है, खून बह रहा है, वही सामने आ जाता और फिर चोट पहुंचती है कि मैं बचा सकता था, मैंने नहीं बचा। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, अब क्या जवाब दें, भैया या तो जो है उसके कर्मों का दोष मान करके और चुप रह जाओ, या फिर अपने ही कर्मों की खोट मानो कि थोड़े से गृहस्थी के पीछे और एक जीवन चला गया, और हम तो सोच रहे थे कि हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ी हिम्मत करके अगर हम साहस करके थोड़ी मुश्किल अपने जीवन में डाल लेते, अपने जीवन को थोड़ी मुश्किल में डाल करके उसकी रक्षा कर पाते तो कम से कम ये दुख तो नहीं होता। ऐसा ही उपाय कर सकते हैं, इतना साहस करना चाहिए, अगर साहस नहीं हो सके तो फिर चुप रहो, फिर बाद में दुखी भी मत हो, अब क्या फायदा, अब दुखी होने से क्या, सहानुभूति तो देते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं, ये अपन की कमजोरी है, है? तो बहुत पहले उन्होंने मुझे सुनाया था, 1984 की बात है, मुझे बताएं कि जनसंख्या वृद्धि तो बहुत हो रही सबसे ज्यादा, हाँ मतलब सबके मन में यही आता है कि एक तो मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है और इतने मनुष्य बढ़ते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दुर्लभ है तो कैसे, और दूसरी बात ये लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैन कुल या जैन धर्मावलंबी ही कम हो रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है कि हमने एक जीव को उच्च कुल में आने से रोक दिया, क्या ये उचित है? जो व्यक्ति अपनी संतति को होने से पहले नष्ट कर देता है या नहीं होने देता है वह नरक आयु और नपुंसक वेद का बंद करता है, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है, इससे ज्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। और ये ध्यान रखना कि आप यहाँ किसी को पालते पोसते नहीं हैं, अपना अपना पुण्य पाप लेके सब आते हैं, आप ये सोचो कि 4 बेटे हो जाएंगे तो कौन पालेगा, 4 बेटियां होंगी तो कौन पालेगा, आज इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक बेटा और एक बेटी, उस